नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौर। 28 जून 2024 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, गाजा में नारकीय हालात के बीच आम लोगों के लिए दैनिक जरूरतें पूरी करने का संघर्ष, कानून व्यवस्था ढहने से राहत ट्रकों में लूटपाट, सूडान में परस्पर विरोधी सैन्य बलों में भीषण टकराव जारी, 14 इलाकों के अकाल की चपेट में आने का वास्तविक जोखिम, दुनिया भर में मादक पदार्थों के इस्तेमाल में आई तेजी, 2022 में 29 करोड़ से अधिक लोगों ने किया ड्रग का सेवन, और 50 से अधिक देशों में औद्योगिक ट्रांस फैट के इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए ठोस नीतियां। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। पिछले 9 महीनों से युद्धग्रस्त गाजा में प्रवेश करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। सहायता आपूर्ति और ईंधन की किल्लत के बीच मानवीय सहायता कर्मी वहां एक कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं, और वो ये कि मौजूदा हालात में जरूरतमंदों तक अति आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए उनके पास सीमित साधन ही उपलब्ध हैं। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी में वरिष्ठ संचार अधिकारी लुइस वॉटरिज ने गाजा वापस पहुंचने के बाद यूएन न्यूज को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गाजा के कई इलाकों में बमबारी धमाकों को सुना जा सकता है, वहां नारकीय हालात हैं, कचरा हर जगह बिखरा पड़ा है, लोग गर्मी में प्लास्टिक शीट के नीचे रह रहे हैं जहां गर्मी में तापमान और बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो बर्बाद खंडहर हो चुकी इमारतों में रहने के लिए मजबूर हैं और कानून व्यवस्था दरक चुकी है। जरूरतमंद फलस्तीनी भोजन की तलाश में मानवीय राहत ट्रकों को रास्ते में ही रोकने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
There are hundreds of people waiting for the trucks to enter. They're desperate. People are desperate. These are very desperate times. People need everything.
लुइस वॉटरिज बता रही थी कि सैकड़ों लोग मानवीय सहायता ट्रकों के पहुंचने की इंतजार करते हैं। यह उनके लिए बहुत ही हताशा भरा समय है। लोगों को हर चीज की जरूरत है। इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने आगाह किया कि गाजा पट्टी अब भी अकाल की आशंका से जूझ रहा है। यहाँ हर 5 में से 1 से अधिक घर परिवार अक्सर पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए गुजारने के लिए मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक खाद्य सुरक्षा विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि सूडान में जारी युद्ध की वजह से वहां बड़े पैमाने पर अकाल पड़ने का जोखिम है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के 14 इलाकों पर सर्वाधिक खतरा है और खाद्य असुरक्षा के इस बदतरीन स्तर जैसे हालात पहले कभी नहीं देखे गए। सूडान में आधी से अधिक आबादी करीब 2.5 करोड़ लोगों को मौजूदा समय से लेकर सितंबर महीने तक संकट या उससे भी बदतर हालात का सामना करना पड़ सकता है। 85 लाख लोग यानी देश की आबादी का करीब 18% हिस्सा आपात स्तर पर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहा है। इस आकलन में चेतावनी दी गई है कि यदि हिंसक टकराव और गंभीर रूप धारण करता है तो आवाजाही, मानवीय सहायता, बाजार और आजीविका में व्यवधान आएगा, हालात और बिगड़ेंगे। यूएन एजेंसियों का कहना है कि परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच 14 महीने से जारी लड़ाई ने देश को तहस नहस कर दिया है। खाद्य सुरक्षा की तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। यूएन सहायता कर्मियों ने व्यापक स्तर पर सूडान और उन पड़ोसी देशों में मानवीय सहायता अभियान शुरू किया है जहां 20 लाख से अधिक सूडानी शरणार्थियों ने आश्रय लिया है। मादक पदार्थों एवं अपराध पर यूएन कार्यालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आगाह किया है कि विश्व भर में करीब 30 करोड़ लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। मादक पदार्थों के इस्तेमाल में तेजी आने के साथ साथ इसकी अवैध तस्करी मामलों में भी वृद्धि हुई है। हर वर्ष 26 जून को ड्रग्स दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एक ड्रग मुक्त दुनिया की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहन देना है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
यूएनओडीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 को समाप्त हुए दशक में अवैध मादक पदार्थों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 29.2 करोड़ पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अधिकतर लोग कैनबीज यानी भांग का सेवन करते हैं, यानी कुल 22.8 करोड़ लोग। अफीम युक्त दवाओं यानी ओपियोड्स का सेवन करने वाले लोगों की संख्या 6 करोड़ है, मेथामेटाफीन का सेवन करने वाले 3 करोड़ लोग हैं, जबकि 2.3 करोड़ लोग कोकेन की लत का शिकार हैं। यूएनओडीसी रिपोर्ट बताती है कि अफीम से तैयार नीटाजींस के बाजार में आने के बाद से इसके जरूरत से ज्यादा सेवन से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्वी एशिया के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में ड्रग तस्करों ने वन्य जीवों की तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध तरीके से संसाधनों के दोहन समेत अन्य गैरकानूनी बाजारों से अपने गुटों को जोड़ने के रास्ते ढूंढ लिए हैं। इस अस्थिरता का खामियाजा विस्थापित निर्धन व प्रवासी समुदायों को भुगतना पड़ता है, जिससे आजीविका के लिए उन्हें अक्सर जबरन अफीम की खेती या अवैध संसाधन निष्कर्षण के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे आम नागरिकों के नशीले पदार्थों के सेवन की लत लगने या उनके आपराधिक समूहों के हत्थे चढ़कर कर्ज में डूबने का खतरा रहता है। यूएनओडीसी सभी देशों की सरकारों, संस्थाओं व समुदायों से साक्ष्य आधारित योजनाएं तैयार करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान करता है, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी व संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई संभव हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने नए अध्ययन में चिंता जताई है कि विश्व भर में वयस्क आबादी शारीरिक निष्क्रियता का शिकार हो रही है। पर्याप्त स्तर पर शारीरिक गतिविधि ना किए जाने और निष्क्रियता के बढ़ते रुझान से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने, उन लोगों के कई बीमारियों का शिकार होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान दुनिया भर में लगभग 1.8 अरब लोग शारीरिक गतिविधि के जरूरी स्तर को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ जिशान तिर्मिजी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए अध्ययन में यह चिंता जताई गई है कि वयस्क आबादी में शारीरिक निष्क्रियता बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 1.8 अरब लोग शारीरिक गतिविधि के आवश्यक स्तर को पूरा नहीं कर पाए। निष्क्रियता से दिल का दौरा, स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह, मनोभ्रंश और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 2010 से 2022 के बीच शारीरिक निष्क्रियता के मामलों में 5% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति जारी रहने पर 2030 तक निष्क्रियता का स्तर 35% तक पहुंच सकता है। लिंग और आयु के आधार पर पसरी असमानताएं चिंता का विषय बताई गई है। महिलाओं में निष्क्रियता का स्तर पुरुषों की तुलना में अधिक है और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग अन्य वयस्कों की तुलना में कम सक्रिय है। हालांकि कुछ देशों में सुधार के संकेत भी मिले हैं। 22 देशों में 2030 तक शारीरिक निष्क्रियता में 15% तक की कमी हासिल करने की संभावना है। WHO ने देशों से शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और निवेश को मजबूत करने का आग्रह किया है। समुदायों में खेलकूद, पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि खाद्य पदार्थों में औद्योगिक ट्रांसफैट के इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए 53 देशों में ठोस नीतियां अमल में लाई जा रही हैं। इन उपायों के जरिए 3.5 अरब से अधिक लोगों के लिए बेहतर खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने में मदद मिली है। ट्रांसफैट या ट्रांसफैटी एसिड आहार में वसा का सबसे खराब प्रकार माना जाता है, जिससे हृदय रोग का जोखिम बढ़ता है। ये आमतौर पर तले हुए भोज्य पदार्थों, बड़े पैमाने पर मशीन के जरिए पकाए गए भोजन, बिस्किट, केक, पिज्जा और हल्के नाश्ते के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्नैक्स में पाया जाता है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
स्वास्थ्य एजेंसी ने सोमवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बात कही है, जो कि पिछले वर्ष तक प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले वर्ष 2018 में 50 करोड़ से भी कम लोगों यानी विश्व आबादी का लगभग 6% के लिए ये उपाय लागू हो पा रहे थे। यूएन एजेंसी ने 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से हर प्रकार के ट्रांसफैट के उन्मूलन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित किया था। ट्रांसफैट या ट्रांसफैटी एसिड के कारण धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे दिल के दौरे व मृत्यु होने का जोखिम बढ़ता है। हृदय वाहिनी रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज विश्व भर में मौतों का एक प्रमुख कारण है। हर वर्ष 2,78,000 से अधिक मौतों की वजह औद्योगिक स्तर पर निर्मित ट्रांसफैट को माना जाता है। इसके स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के कारण मौजूदा प्रगति के जरिए हर वर्ष 1,83,000 लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद मिली है, मगर फिलहाल ये प्रगति असमान है और इसका सबसे अधिक बोझ अफ्रीका और पश्चिमी प्रांत क्षेत्रों में बरकरार है। नई रिपोर्ट में इस खतरनाक रसायन पर पाबंदी लगाने के लिए देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर जानकारी दी गई है, साथ ही वैश्विक ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए सिफारिशें पेश की गई हैं।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए, नमस्कार।